नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। बजट सत्र के पहले दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू विकास चालकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास का समर्थन किया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि माल और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा का पुनर्अनुमान और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार होने और ग्रामीण मांग के पुनरुद्धार का समर्थन करने की संभावना है। उन्होंने कहा, जीएसटी और आईबीसी जैसे संरचनात्मक सुधार भी परिपक्व हो गए हैं और परिकल्पित परिणाम दे रहे हैं। सरकार ने आज कहा कि पिछले 7 वर्षों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है और वह कथित नीट यूजी पेपर लीक मामले में कुछ भी नहीं छिपा रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपने गठन के बाद से 240 परीक्षाएं आयोजित की है और एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा में 4,50,00,000 से अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं। देश में पेपर लीक की घटना के विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और नीट परीक्षा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की कुल पनबिजली क्षमता का 40% उत्पादन करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि राज्य में 58,000 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की क्षमता है। बिजली विभाग का भी प्रभार संभाल रहे श्री मेन ने आज राज्यसभा में राज्य में पनबिजली परियोजनाओं से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश में 12,000 मेगावाट पनबिजली की स्थापित क्षमता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में 4 CPSU के साथ राज्य में 13 पनबिजली परियोजनाओं के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 परियोजनाएं प्रगतिशील चरणों में हैं और उन्हें तुरंत शुरू किया जाएगा। श्री मेन ने कहा कि एक बार ये 13 परियोजनाएं चालू हो जाए तो राज्य को सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना 2026 तक पूरी तरह चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2800 मेगावाट की दिवांग घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का काम चल रहा है और इसमें 12.32% भौतिक प्रगति हासिल हो चुकी है। गृहमंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि राज्य में 21 महिला पुलिस स्टेशन अधिसूचित है, जिनमें से 7 अभी कार्यरत है। गृहमंत्री ने आज विधानसभा में विधायक वांगलिंग लुआंगदोंग द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि 7 पुलिस स्टेशन पासीघाट, आलो, ईटानगर, तवांग, तेजू, सेपा और जीरो में कार्यरत है और सरकार से इस 15 महिला पुलिस स्टेशनों को बहुत जल्द क्रियाशील बनाने में काम कर रही है। श्री नातुंग ने आश्वासन दिया कि एक बार बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद शेष स्टेशनों को भी चरणबद्ध तरीके से क्रियाशील बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज विधानसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि उन्होंने राज्यभर में सरकारी उच्चतर माध्यमिक और सरकारी माध्यमिक विद्यालय के लिए 549 विषय शिक्षकों की भर्ती के लिए मांग रखी है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में सरकारी शिक्षकों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री शिक्षा कोष के तहत शिक्षा विभाग ने 2023-24 में 777 विषय शिक्षक उपलब्ध कराए हैं। शिक्षकों के पोस्टिंग के युक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एक शिक्षक रजिस्ट्री पोर्टल विकसित किया गया है, जहां 15,878 शिक्षकों का डाटा अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग सभी शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश जारी करेगा। श्री मेन ने जवाब में कहा कि वर्तमान पोर्टल अगले शैक्षणिक सत्र से पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
This is Akashvani Itanagar, the news read by Indu Chukwu. The Economic Survey 2023-24 has projected a real gross domestic product growth of 6.5-7% in financial year 2024-25. On the first day of the budget session, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled the economic survey in the Lok Sabha. According to the survey, domestic growth drivers have supported economic growth in the financial year 2023-24 despite uncertain global economic performance. The survey states that merchandise and services exports are likely to increase. It further mentions that a normal rainfall forecast by the India Meteorological Department and the satisfactory spread of the southwest monsoon is likely to improve agriculture sector performance and support the revival of rural demand. It also said structural reforms such as the GST and the IBC have also matured and are delivering envisaged results. The government today asserted that there is no evidence of paper leaks in the last 7 years and it is hiding nothing in the alleged NEET UG paper leak case. Replying to supplementaries during the question hour in the Lok Sabha, Education Minister Dharmendra Pradhan said the National Testing Agency has conducted 240 examinations since its formation and over 4 crore 50 lakh students have appeared in the examinations conducted by the NTA. Rejecting the allegations levelled by the opposition parties that paper leak incidents have become rampant in the country, Mr. Pradhan said that the CBI is investigating into the matter and the NEET examination issue is sub judice in the Supreme Court. Deputy Chief Minister Chona Main said that Arunachal Pradesh has the potential to produce 40% of the total hydropower capacity of India. He said that the state has the capacity to produce 58,000 MW of hydropower. Mr. Main, who also holds the portfolio of Power Department, while replying to a question in the State Assembly relating to hydropower projects in the state, said that Arunachal Pradesh as of today has an installed capacity of 1200 megawatt of hydropower. He said that the state government has recently signed MOUs for 13 hydropower projects in the state with 4 CPSUs. He said of these, 4 projects are at progressive stages and will be started immediately. Mr. Men said that once these 13 projects become functional, the state will have a yearly revenue earning of around 10,000 crore. The Deputy Chief Minister also informed that the Lower Subansiri hydropower project will be fully commissioned by 2026. He added that work of the 28,000 megawatt Dibang Valley multipurpose project is going on and has achieved 12.32% of physical progress. Arunachal Pradesh Home Minister Mama Natung today informed that there are 21 women police stations notified in the state, of which 7 are functional as of now. The Home Minister said this while replying to a question raised by MLA Wanglin Luangdong in the Assembly today. He said that 7 police stations, one each at Pasighat, Alo, Itanagar, Tawang, Teju, Sepa and Jiro are functional and the state government is working on making the rest 15 women police stations functional very soon. Mr. Natung assured that once the process of infrastructure and creation of manpower is done, the remaining stations will also be made functional in phased manner. The state's education minister, P.D. Sona, in a written reply in the assembly today said that it has placed requisition for recruitment of 549 subject teachers for government higher secondary school and government secondary schools across the state. He stated that there is acute shortage of government teachers in these schools. He added that, however, under Mukhya Mantri Siksha Kosh, the Education Department has provided 777 subject teachers in 2023-2024. On the rationalization of transfer and posting of teachers, he said that it Teacher Registry Portal has been developed for the purpose where data of 15888 teachers have been uploaded. That's all in this news bulletin. Namaskar.